जल्दी ही उनकी कार मेंशन पर आकर रुकी। अरमान एक बार फिर सिंघानिया मेंशन में प्रवेश कर चुका था। आस्था की मामी ने उसे घूंघट उठाने से सख्त मना किया था। वो किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वो अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती। कहीं ना कहीं उसकी मामी को इस बात का डर था कि अगर अरमान सिंघानिया को दुल्हन बदलने वाली बात का पता चला तो अरमान सिंघानिया उन सबको गोलियों से उड़ा देगा, क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में काफ़ी हद तक नकारात्मक बातें ही पूरे शहर में फैली हुई थीं। अरमान सिंघानिया को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अरमान अपने गुस्से में किसी की भी जान ले सकता था। एक तरह से मौत का दूसरा नाम था अरमान सिंघानिया। वेल, आस्था को कार से उतारने वाला वहाँ कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए गेट का दरवाज़ा खोल दिया। आस्था नीचे उतर गई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे किस ओर जाना है, क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसीलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। फिलहाल आस्था अपनी जगह खड़ी हो गई थी। अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। हालांकि उसने कोशिश की, हल्का सा घूंघट उठाकर इधर उधर ना समझी में देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ मार्बल का फर्श ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक दादाजी रुके। उन्होंने देखा कि आस्था पीछे रह गई थी और अरमान लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ मेंशन की ओर जा रहा था। दादाजी ने आवाज लगाई, अरमान ठहरो, तुम इस तरह से बिना दुल्हन लिए मेंशन में प्रवेश कर सकते हो? जाओ, दुल्हन को भी अपने साथ अंदर लेकर आओ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अरमान चिढ़ गया। अरमान ने अपने दादा को घूर कर देखा, लेकिन उस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि अरमान ने खुद ही अपने दादा को वादा किया था कि उसके दादा जो कुछ भी कहेंगे वो वही करेगा। इसीलिए वो चिढ़ता हुआ सीधा आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया और आस्था की ओर गुस्से से देखकर कहने लगा, क्या थोड़ा सा तेज नहीं चल सकती, या तुम्हें चलना ही नहीं आता है? ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका हाथ कसकर पकड़कर वो उसे लगभग घसीटते हुए सिंघानिया मेंशन के अंदर लेकर जाने लगा। अब आस्था की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एक तो उसने कोहनियों तक लाल रंग का चूड़ा पहना हुआ था, ऊपर से अरमान ने उसका हाथ काफ़ी तेज़ी से पकड़ा था, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। हल्की सी चीख उसके होठों से निकल गई, लेकिन अरमान ने उसकी चीख को अनसुना कर दिया और लगभग उसे घसीटते हुए सिंघानिया मेंशन के गेट पर पहुंचा। और जैसे ही वो उसे लेकर अंदर की ओर जाने लगा, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों ने एक साथ खड़े होकर चिल्लाया, रुको भाई। अब जैसे ही अरमान ने सुना, उसने आईब्रो उठाकर उन चारों की ओर देखा। एक पल के लिए चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए, लेकिन उन सब ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। अरे, हमने बहुत सारी मूवीज और फिल्मों में देखा है कि जब भी कोई नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। तो क्या हुआ अगर हमारे घर में लेडीज नहीं है तो? लेकिन हम लोग तो हैं, हम तो भाभी का वेलकम अच्छी तरह से कर सकते हैं ना? अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट देगी है मैंने तुम्हें। तुमने बहुत कॉलेज का बहाना बना लिया, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। अब जैसे अचानक से अरमान ने ये कहा, आहान की हालत खराब हो गई और वो कहने लगा, नहीं नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा, और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? और कल से तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाले हैं भाई, आप नहीं जानते कितना सारा कॉलेज का काम करना है मुझे। और तकी सुमित कहने लगा, देखो अरमान, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते हो, ठीक है? और अभी हम लोग तुम दोनों की पहले आरती वगैरह उतारेंगे और उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से ये कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। जैसे ही सुमित ने ये कहा, अरमान का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बचे कि वो अब उन सबके इस तरह के रीति रिवाज और कर सके। और तभी अरमान ने गुस्से से कहा, इन सब कामधाम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हटाओ यहाँ से और तुम सब हटो मेरे रास्ते से। ऐसा कहकर अरमान गुस्से से आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी कहने लगे, अरे बेटा, अगर बच्चे ज़िद्दी कर रहे हैं तो करने दो उन्हें भी अपने मन की। अगर वे अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक टोक रहे हो? तब अरमान गुस्से से दादाजी की ओर देख कर कहने लगा, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ शादी तक ही थी। शादी तक ही आपने जो कुछ कहा मैंने वही सब किया, लेकिन अब क्योंकि शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है, तो अब मैं आपकी किसी तरह की कोई भी फरमाइश मानने का या सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसा कहकर अरमान जल्दी ही आस्था का हाथ वहीं दरवाजे पर छोड़कर खुद लंबे लंबे कदमों से बढ़ता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। और अब चारों के चारों अफसोस से उसे जाते हुए देख रहे थे और सभी को रह रहकर अपनी भाभी जो नई नवेली दुल्हन थी उसे देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा था, जो दरवाजे पर अब अकेली खड़ी थी। अब आलोक जी भी चुप हो गए, क्योंकि वो अपने अकड़ू पोते को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पोता कितना ज़्यादा अकड़ू और ज़िद्दी है और कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी बीमारी के चलते जैसे तैसे अरमान से शादी का वादा लिया था और उसकी शादी करवा दी थी। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि अब उनका पोता उनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं है, इसीलिए वो अब सीधा अपने कमरे की ओर चले गए। लेकिन जाने से पहले वो उन चारों से कहना नहीं भूले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अरमान के कमरे तक छोड़ाओ। दादाजी के जाने के बाद अब चारों को इजाज़त मिल चुकी थी आस्था के गृह प्रवेश करने की। आस्था दरवाजे पर खड़ी हुई अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है।
उसके कानों में तो सिर्फ सभी की बातें सुनाई दे रही थी। और अरमान का गुस्से से इस तरह से जवाब देना सुनकर कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि अरमान कितना बड़ा घमंडी और जिद्दी इंसान है। कहीं ना कहीं अरमान को बिना देखे ही, बिना जाने ही, बिना सोचे समझे उसके बारे में आस्था ने एक जिद्दी, गुस्सेल और अकड़ू की अलग ही छवि अपने मन में बना ली थी। बेल तभी आकाश ध्रुव की ओर देखकर कहने लगा, अरे यार अब क्या करें, अरमान तो ऐसे कैसे चला गया, अब भाभी का क्या, बेचारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी। तभी वो चारों थोड़ा सा आगे आए और कहने लगे, भाभी देखो अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना तो यहाँ आपका पति है और ना ही आपके दादा ससुर हैं, तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती हैं।